मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 13 जुलाई 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान दोस्तों के नाम हैं उदय प्रताप सिंह जो इलाहाबाद से हैं और राजीव कुमार जो मुंबई से हैं। तो उदय, राजीव, आप दोनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो दिनों के गैप के बाद आज हम सब बातचीत के लिए आमने सामने हैं। फेस से न सही लेकिन आवाज से तो हम आमने सामने हैं ही। तो इससे पहले कि मैं आज के अपने प्रोग्राम की शुरुआत करूं, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपने उन सभी नौजवान साथियों को जो कल, खासकर विकास ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, रॉकी ने जो पूरी की पूरी व्यवस्था देखी थी, और भी वहां जो टीम थी, मनीषा की थी, राधा की थी, प्रीति की थी, मंजू की थी, और भी वहां दूसरे जो साथी थे, उन सबके माध्यम से उन सब ने मिलकर जो वहां प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसमें जितनी संख्या में स्टूडेंट पहुंचे वो सचमुच बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाली है। वहां जितने भी स्टूडेंट पहुंचे, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अपनी पूरी टीम की ओर से आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। और मेरा ये जो आभार और धन्यवाद है दोस्तों, ये एक महज औपचारिकता नहीं है। औपचारिक तौर पर तो मैं कोई काम कर ही नहीं पाता। मैं खासकर धन्यवाद और आभार इसलिए देना चाह रहा हूं कि आपके अंदर जो एक एनर्जी है, उस एनर्जी का एक प्रमाण मिला है। बारिश हो रही थी, दूर जाना था, मुझे मालूम है कि दिल्ली में पहुंचना कैसे कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप सब पहुंचे। और उन बाधाओं को अगर आप लांग कर पहुंचे तो इसका मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है वो बाधाओं की गुलाम नहीं है, उसमें इतनी ताकत है कि उन बाधाओं को वो दूर कर सकती है। मित्रों, एक जसप्रीत जो मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे, वो पंजाब में रहते हैं, एग्जैक्ट शायद लुधियाना जो कहीं से है, एग्जैक्ट मुझे स्थान का नाम मालूम नहीं है, कि वो आ रहे थे और वो दिल्ली पहुंच गए थे। अनफॉर्चुनेटली उनके सिर में चोट लगी और चोट लगने के कारण उन्हें लौटना पड़ा। वो उतनी दूर से आए हुए थे। और भी मुझे पता लगा कि बहुत छतरपुर से, ग्वालियर से और आसपास के दूसरे स्थानों से भी वहाँ स्टूडेंट आए हुए थे, और खासकर ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी जो थर्ड बैच में अभी अक्टूबर में आने वाले हैं। उन सब ने बहुत फ्रूटफुल वहाँ डिस्कशन किया, और मैं इस बात के लिए स्पेशली तारीफ करूँगा कि जो मैंने अपने ऑडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ जो ह्यूमन डिग्निटी होती है उसका प्रोग्राम के समय ध्यान रखें और अनुशासन बनाए रखें। जो मुझे जानकारी मिली है विकास और रॉकी से कि आप लोगों ने बहुत बहुत उच्च श्रेणी के अनुशासन का परिचय दिया है। मित्रों, मैं आप लोगों के अंदर जो अनुशासन वाला जो तत्व है और जो ये एनर्जी वाली जो बात है, जिसको मैं एक तरह से दैवीय तत्व मानता हूं, एक डिवाइन क्वालिटी मानता हूं, सच पूछिए तो स्वागत, धन्यवाद, आभार शब्द छोटे पड़ते हैं। मुझे कहना चाहिए कि मैं ऐसे तत्वों के को नमन करता हूं। मित्रों, बस एक ही बात है कि आप अपनी इस एनर्जी को बनाए रखें, अपने इस अनुशासन को बनाए रखें, अपने इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखें। आप देखेंगे कि किस तरीके से एक दिन ऐसा आएगा जब सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता मित्रों, सच पूछिए तो वैसे ही कदमों को चूमती है जिन कदमों में वो ताकत देखती है, गति देखती है, ऊर्जा देखती है। ढीले पड़ जाने वाले और बहुत जल्दी थक जाने वाले चरणों को न तो आप पकड़ना चाहेंगे और न ही यूपीएससी पकड़ना चाहेगी, और स्वाभाविक है कि सफलता तो उन्हें पकड़ना चाहेगी ही क्यों। तो दोस्तों, अपनी उस ऊर्जा को बनाए रखें, अपनी उस शक्ति को बनाए रखें। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे अब्दुल हमीद अब्दुल थे, वो बहुत लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, वो पहुंचे, और बहुत से नाम हैं मित्रों, मैं कितनों के नाम लूं, लेकिन आप सब जो पहुंचे उनके प्रति एएफई की ओर से भी, विकास की ओर से भी, रॉकी की ओर से भी, और जितने भी वहां ऑर्गेनाइज करने वाले यंग स्टूडेंट्स थे, उन सब की ओर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, अब दो इंपॉर्टेंट सूचनाएं आप सबके लिए हैं। पहली सूचना तो ये है फ्रेंड्स कि किसी टेक्निकल कारण से जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस जो सैटरडे को या संडे को फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के पास पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया है, लेकिन मंडे को आज ये स्पेशल ऑडियो गाइडेंस उनके पास पहुंच जाएगा। ये जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है इसका सब्जेक्ट इस बार रखा गया है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए नहीं दिया जाए उसके क्या है, इसी इश्यू पर मैंने बात की है और उसके चार क्वेश्चन जो इसी टॉपिक पर बन करके जो एंगल्स उसके तैयार होंगे उसको मैंने उसमें एनालाइज किया है। तो ये स्पेशल ऑडियो गाइडेंस आप लोगों के पास आज पहुंचेगा। मुझे इस बात का दुख है कि आप लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं और मुझे लगता है कि यू ऑल विल बेयर विथ मी, आप सब ऐसे मामलों में मेरा साथ देंगे। दूसरी खबर है जो दोस्तों वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है और वो खबर ये है कि इस बार आज हमने अपने नॉलेज सेंटर पर एक मॉक टेस्ट डाला है। मुझे लगता है कि आप लोग इस खबर को वेलकम करेंगे। उस वो जनरल स्टडीज का प्री एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट पेपर आपके जो जनरल स्टडीज का होता है उसके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस नॉलेज सेंटर में डाले हुए हैं। आप नॉलेज सेंटर में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों। 50 क्वेश्चंस हैं और वो 50 क्वेश्चंस के 50 ही मार्क्स रखे गए हैं जानबूझ करके, टाइम 60 मिनट का रखा गया है, वो अपलोड उसमें मैं कर दिया गया है फ्रेंड्स। उसे आप देखें, उसे सॉल्व करें और सॉल्व करने के जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसकी डिटेल्स भी उसमें बता दी गई है कि आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट करके आप किस श्रेणी में आ रहे हैं, जो ऑलमोस्ट यूपीएससी की जो सफलता की श्रेणी होती है उसी के पैटर्न पर उसको तैयार किया गया है। वहां आप देख लें कि आप किस में आ रहे हैं। हां, ये मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप उतनी मार्किंग करेंगे उसमें ऑलरेडी आंसर शीट भी दी हुई है, उस आंसर शीट से आप मिला लें और जितने आपके नंबर गलत हुए हैं आप खुद को निगेटिव मार्किंग दें। निगेटिव मार्किंग का जो फार्मूला है वो उस इंस्ट्रक्शंस में दिए हुए हैं और फिर आप देखें कि आपको कितने मार्क्स मिले टोटल और फिर आप अपनी श्रेणी का निर्धारण कर लें जो उसी में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि इस मॉक टेस्ट को आप बिल्कुल उसी तरीके से हल करें जैसे कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर हल कर रहे हैं। और मित्रों, मैं ये भी चाहूंगा कि प्लीज इस मॉक टेस्ट के बारे में आप दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी इससे लाभ पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे लाभ पहुंचे। और एकेडमी यदि आपको लाभ पहुंचाना चाह रही है बिना किसी फीस के ये लाभ पहुंचा, इसकी कोई फीस नहीं है, इसके लिए आपको कहीं कुछ भी पैसा जमा नहीं करना है, कोई खर्च नहीं करना है, केवल अपने 60 मिनट लगाने हैं और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। तो डेफिनेटली यदि एकेडमी आपके लाभ के बारे में ये सोच रही है, यदि आप इसका लाभ उठा सकेंगे तो डेफिनेटली आप भी दूसरों के लाभ के बारे में सोचें और ज्यादा से ज्यादा इसे दूसरों से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दूसरों को भी फायदा हो सके। मित्रों, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चंस के स्तर हैं, जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, यूपीएससी के काफी कुछ करीब रखने की कोशिश की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके आधार पर आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन काफी कुछ सीमा तक कर सकेंगे और ये शुरुआत है। जब तक आपके प्री टेस्ट नहीं हो जाते तब तक हर सप्ताह हम इस तरीके के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये दूसरी सूचना थी और मुझे विश्वास है कि ये दूसरी सूचना आपको रोचक लगी होगी क्योंकि इस बीच में मेरे पास कई मेल इस बारे में आए थे कि सर क्या ये संभव नहीं है कि हम लोगों को इस तरह से कुछ टेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं। वो मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा था लेकिन फ्रेंड्स होता यह है कि हर चीज की एक सीमा होती है, उस सीमा के तहत ही काम किया जा सकता है। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि अंततः मैंने ये काम करने में सफलता पाई है। उतनी बड़ी मात्रा में भले ही ना सही लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो ही गई है और मेरी कोशिश होगी कि हम इस शुरुआत को कंटिन्यू करें। फ्रेंड्स, ये दो इंपॉर्टेंट सूचना थी। अब मैं आता हूं मोटिवेशन वाले पार्ट पर। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों से फिर से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, वो ये, मेरे पास बहुत से मेल आए हैं और वो दो तरह के मेल हैं। ज्यादातर मेल 90% मेल तो इसी बात के हैं कि सर अभी जो आपने पैटर्न लिया हुआ है एक प्रिपरेशन के बारे में, आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। दूसरे मेल मेरे पास कुछ इस तरह के, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, वो ये है कि सर आपने 25 मिनट तो इसी में खपा दिए और 5 ही मिनट का केवल मोटिवेशन का रहा, तो लग रहा है कि इस हिसाब से तो 5 मिनट ही केवल न्यूज का रहा और लग रहा है कि 5 मिनट भी न्यूज के खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या फायदा क्या ये। मैं इस तरह की सोच वाले जो स्टूडेंट हैं, पूरी विनम्रता के साथ उनको सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने माइंड सेट को बदलिए। मैं आपके सामने बम्बार्डिंग कर सकता हूं न्यूज की, सबसे आसान काम है ढेर सारे न्यूज परोस देना, ढेर सारे किताबों के नाम बता देना, सैकड़ों हजारों पेज के नोट्स प्रोवाइड कर देना, सबसे आसान काम है। क्या आपका दिमाग उनको याद रख सकेगा? और उससे भी बड़ी बात है कि क्या उनका उपयोग है, उनका उपयोग किया जा सकेगा? फ्रेंड्स, जब भी आप कोई यात्रा करते हैं, आपको रास्ते की जरूरत पड़ती है। अगर आपका रास्ता ऊबड़ खाबड़ बेकार है तो पहुंचने में टाइम लगेगा, यदि आपका रास्ता गलत है तो आप वहां पहुंचेंगे ही नहीं जहां आपको पहुंचना था, और अगर आपके पास रास्ता ही नहीं है तो आप भटकते रह जाएंगे, कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, और हो सकता है कि भटकते भटकते उसी जगह पर वापस आ जाएं जहां से आपने यात्रा की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स, सिविल सर्विस की जो तैयारी है मजाक नहीं है, आप जानते हैं इसको, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं। सिविल सर्विस की तैयारी एट रैंडम में अव्यवस्था के साथ नहीं होती है। जो चीज जितनी चैलेंजिंग होती है, याद रखिए, उसके लिए हमें उतना ही अधिक साइंटिफिक और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाना पड़ता है, तब जाकर के हमें सफलता मिलती है। सानिया मिर्जा को बधाई एकेडमी की तरफ से, आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से, कि उन्होंने उनकी जिंदगी का सपना पूरा हुआ कि उन्होंने विंबलडन का युगल मैच जीता, पहला खिताब। हालांकि इससे पहले भी वो ग्रैंड स्लम जीत चुकी हैं युगल का, और युगल की रैंकिंग फर्स्ट में वो आई हैं। आपको मालूम है कि जरा सा बैकग्राउंड में जाकर के देखिए कि पिछले कितने सालों से सानिया मिर्जा वर्ल्ड के बेस्ट कोच से सीख रही थी, तब जाकर के सफलता मिली है। क्या जरूरत थी उनको कोच से सीखने की? वो सीधे सीधे टेनिस ही खेलती रहती है कि हमारी क्षमता बढ़ जाएगी, क्या वो जीत जाती है? मित्रों, चूंकि चैलेंज बहुत बड़ा है तो उसके लिए साइंटिफिक अप्रोच भी बहुत बड़ी लगती है। प्लीज अपने ओल्ड माइंड को ड्रॉप कीजिए कि पढ़ो 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 पढ़ो, खूब पढ़ो। इसीलिए मित्रों, जो कुछ स्टूडेंट्स के जो बहुत ही पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स आते हैं, हमको ये सफलता मिल गई और वहां से ये क्वेश्चन पूछे गए, मैं जानबूझ करके उनके मेल आप लोगों के सामने बताता हूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं आपके एकेडमी की तरफ से बताऊं या मैं अपने लिए बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए, मुझको आप चाहेंगे, सम्मान देंगे, प्रेम करेंगे, तब जब मेरी चीजों के परिणाम आने शुरू होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। और मैं बताता ही रहूंगा तो कौन कितना सम्मान कर लेगा, कितना प्रेम दे देगा? नहीं होता है ऐसा। जो बात कही जा रही है वो कितनी सही है, कितनी परफेक्ट है, कितनी उपयोगी है, इन सब चीजों से इन बातों का निर्धारण होता है। मैं ये बात आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन हो सके। तो प्लीज फ्रेंड्स, ओल्ड माइंड सेट को बदलिए। मैं मान सकता हूं कि इस ओल्ड माइंड सेट के जरिए आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया होगा। शनिवार को एक रोचक मेरे साथ बात भी हुई, उसकी चर्चा मैं कभी आप लोगों से करूंगा, जब मेरे पास एक स्टूडेंट आया था या आई थी डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि दो अटेम्प्ट से वो बैठ रही है एग्जामिनेशन में, तीन बार वो बैठी, एक बार तो उसने प्री ही क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन दो बार से वो इंटरव्यू तक पहुंच रही है लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है, उसको लेकर के वो बहुत परेशान थी। वो बड़े साफ रीजन उसके दिखाई दे रहे थे, वो मैं आप लोगों से बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन उस ये इस संदर्भ को मैं यहां इसलिए लेकर के आया हूं कि उसका सारा जोर केवल पढ़ने 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 पर था। इस बात को आप बदलिए। तो फ्रेंड्स, मुझे सच में इस बात की भी बेहद खुशी है कि मेरे पास जो मेल आए हैं उसमें ढेर सारे स्टूडेंट्स ने मुझे उन स्टूडेंट्स के बारे में खबर दी है और परीक्षा परिणामों के बारे में बताया है जो अभी अभी डिक्लेयर हुए हैं। मैं इनके नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे इनके नाम लेने चाहिए। संदीप छीना है अमृतसर से, उन्होंने एक स्टूडेंट का नाम लिया है दीबा फतह जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने लिखा है कि ये सेलेक्ट हुई है, और मजेदार बात यह है कि एक महीने पहले जम्मू और कश्मीर में जो फ्लड आया था सारे नोट्स किताबें उनकी सब उसमें बह गई थी, लेकिन सफल। और भी मेरे पास दूसरे बहुत से आए हुए हैं, अजीत सिंह हैं, अजीत सिंह ने मेरे पास ढेर सारी लिंक भेजी है कि सर इन इन लिंक पर इन स्टूडेंट्स की मार्कशीट है, इंटरव्यू है ये। और ठीक इसी तरह से दोस्तों मेरे पास एक वरुण त्रिपाठी हैं गोंडा से, उत्तर प्रदेश से, उन्होंने मेरे पास एक बहुत अच्छे सिलसिलेवार एक चीज भेजी है, और जिसमें उन्होंने शुरू के जो 43 स्टूडेंट थे या जो भी है उन्होंने 43 स्टूडेंट दिया हुआ है, उनके सब्जेक्ट का एनालिसिस भेजा है कि उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो 43 स्टूडेंट्स हैं उनके अगर सब्जेक्ट का वेरिएशन लें तो 15 सब्जेक्ट लिए, मतलब स्टूडेंट 43 और सब्जेक्ट 15, उसमें एंथ्रो भी है, इकोनॉमिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, ज्योग्राफी भी है, गुजराती लिटरेचर भी है, हिंदी लिटरेचर भी है, कन्नड़ लिटरेचर भी है, मैथिली लिटरेचर भी है, मलयालम भी है, मैथमेटिक्स भी है, मेडिकल साइंस भी है, फिलॉसफी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है और सोशियोलॉजी भी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आप अपने दिमाग से मिथक को निकालिए कि कोई सब्जेक्ट आपको आईएएस बना देगा, नॉट एट ऑल, आप खुद आईएएस बनेंगे। सब्जेक्ट तो आपको नाव की तरह आपकी मदद करेगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किस नाव में बैठे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस नाव को किस तरीके से खे रहे हैं। तो मित्रों इसलिए मैंने इस बात की आपसे चर्चा की जो वरुण त्रिपाठी ने मेरे पास भेजा। दोस्तों तीन स्टूडेंट हैं जिसमें राहुल उपाध्याय हैं, फिर विष्णु मोहन हैं, और इन्होंने एक स्टूडेंट का राहुल उपाध्याय हैं जिन्होंने एक स्टूडेंट का नाम भेजा है जो केवल 22 साल के हैं, इलाहाबाद के हैं, यंगेस्ट हैं और उनकी 1173वीं रैंक आई है, और स्टूडेंट का नाम है विष्णु मोहन, भेजने वाले हैं राहुल उपाध्याय। केवल 22 साल और 17 दिन में उन्होंने इतनी रैंकिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में यहां आ गए, बहुत कम एज में वो सर्विस में एंटर किया उन्होंने। जब आप बहुत कम एज में सर्विस में एंटर करते हैं बट नेचुरल दोस्तों, तो लेंथ ऑफ सर्विस आपकी बढ़ती है तो आप अपनी सर्विस में उतने टॉप पर पहुंचते हैं, और स्वाभाविक है कि अगर 22 साल की उम्र में उनकी ये रैंकिंग है, ठीक है रैंकिंग नीचे से ज्यादा है, नीचे के ज्यादा करीब है, लेकिन अगर फर्स्ट में ये हाल है तो हम ये स्थिति है, हाल नहीं कहना चाहिए, तो डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि सेकेंड रैंकिंग में वो बहुत ऊंचाई पर होंगे। और क्या आश्चर्य है कि हम अगली बार विष्णु मोहन का नाम एज ए टॉपर पढ़ें, हम झूठला नहीं सकते। इसी तरह से मित्रों तीन मित्र हैं, जसविंदर चौहान हैं लखनऊ से, रजत तिवारी हैं और एक हैं विशाल केसरी। इन तीनों दोस्तों ने निशांत जैन के बारे में मेरे पास लिखा है, मुझे लिखा है कि निशांत जैन जो मेरठ के हैं और जिनकी रैंकिंग 13th रही है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हिंदी मीडियम से हैं, उनका इंटरव्यू कहीं छपा है कहीं आया है, और सब ने मुझे उनके इंटरव्यूज के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं दी हैं, मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि निशांत जैन जिनकी रैंकिंग 13th रही है उन्होंने इंटरव्यू के बारे में क्या कहा है। पहली बात उन्होंने कही है कि रटे नहीं, साफ साफ कहा है कि चीजों को रटे नहीं। सेकेंड बात उन्होंने कही है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें, इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब एक समग्र अप्रोच जिसको कहते हैं, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को, दूसरे सब्जेक्ट के तीसरे, यानी कि कंप्लीट अप्रोच आपकी होनी चाहिए क्योंकि एक समग्रता का समय है। और फिर उन्होंने कहा कि कनेक्ट कीजिए चीजों को, कॉमन सेंस के साथ कनेक्ट कीजिए। साफ साफ कहा कि रात में जगने या 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि समाज में एक्टिव रहिए, बंद कमरे में मत पढ़िए। मत पढ़िए का मतलब है कि बंद कमरे में आप, यानी कि केवल कमरे में बंद होकर के पढ़ रहे हैं तो आप सोचेंगे कि आपने खूब पढ़ लिया है और आप आईएएस बन जाएंगे। मित्रों जिसकी चर्चा मैं बार बार आप लोगों से करता रहता हूं कि निकलिए, अब जो आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे वो किताबों से कम समाज से अधिक दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के जो स्वरूप हैं वो कुछ ऐसे हैं जो आपसे एक अलग ही तरीके के अप्लाइड नॉलेज की, कॉमन सेंस जिसे निशांत जैन ने कहा, उसकी मांग करते हैं। और मित्रों, निशांत जैन के बारे में मैं आपको एक दो चीजें बता दूं कि सेकेंड अटेम्प्ट में उनका ये सिलेक्शन हुआ है और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो आप कल्पना करके देखिए कि उन्होंने एक बार की परीक्षा देने के बाद अपने को अपना बहुत ही निर्मम तरीके से मूल्यांकन किया, अपनी कमियों को समझा और कमियों को समझने के बाद उन्हें दूर किया, और जो स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, सेकेंड अटेम्प्ट में 13th रैंक ला रहा है। और आपको फ्राइडे की आडियो में मैंने भी अपने एक बैचमेट के बारे में आपको इसी तरीके से बताया था। मीडियम इनका हिंदी था और इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था वो हिंदी लिटरेचर था, और उसके पीछे रीजन ये था कि उन्होंने हिंदी में ही एमए किया है और एमफिल भी, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को चुना। मित्रों, मैं ये सब बातें आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं कि आप सफलता की जन्म पत्रियों को देख सकें, समझ सकें कि सफलता कहां मौजूद रहती है, ताकि आपका दिमाग इन फालतू फालतू की चीजों में न पड़े। इसलिए फालतू फालतू की चीजों में कह रहा हूं दोस्तों, मेरे पास बहुत से मेल आते हैं और उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं उन मेल का जवाब नहीं देता, क्योंकि अभी जब अब प्रगति मैदान में संडे को जो एएफई का प्रोग्राम विकास रॉकी ने किया, उसमें बता रहे थे कि सर बहुत से स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि हम सर के पास मेल भेजते हैं लेकिन हमें कोई उसका उत्तर नहीं मिलता। दोस्तों, मैं आपको एश्योर करना चाहूंगा कि हर मेल मैं पढ़ता हूं, एक भी मेल बिना पढ़ा हुआ नहीं रहता, उनके मैं उत्तर भी देता हूं। दो तरीके से उत्तर देता हूं, नाम से बहुत कम उत्तर देता हूं मैं अपने मोटिवेशन वाले पार्ट में, या दूसरे तरीके से उसको शामिल करके उत्तर देता हूं, क्योंकि अगर मैं सबके नाम ले लेकर के उत्तर देने लगूं तो पता लगा कि ये 30-35 मिनट का बहुत सा समय उसमें चला जाएगा। लेकिन मैं उनके उत्तर बिल्कुल नहीं देता जो मुझे उत्तर देने लायक लगते ही नहीं, और इसीलिए मैं इस तरह की चर्चाएं कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये सब चीजें क्लियर हो जाएं और आपका दिमाग इन सब चीजों से मुक्त होकर के और अच्छे प्रश्न गढ़े। जब तक आप इन छोटे छोटे छोटी छोटी फालतू की चीजों से नहीं उबरेंगे तब तक आपका दिमाग अच्छे क्वेश्चंस नहीं गढ़ सकेगा। आप अच्छे क्वेश्चंस भेजिए, मुझे उत्तर देकर खुशी होगी क्योंकि मैं आपके लिए ही इसको तैयार कर रहा हूं, है ना। तो आप लोगों की शिकायत अपनी जगह पर जायज हो सकती है क्योंकि आप लोगों की मुझसे ये अपेक्षा होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स कि जैसे आप लोगों की मुझसे कुछ अपेक्षाएं हैं, स्वाभाविक तौर पर मेरी भी आप लोगों से कुछ अपेक्षाएं हैं, और मुझे लगता है कि इतना अधिकार तो आप भी मुझे देना चाहेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास एक और मेल आया है रवि पवार का औरंगाबाद से, जो एक स्टूडेंट रही है तमिलनाडु के ईरोड जिले की सी वनमती, उनके बारे में भेजा है। ये जिस दिन रिजल्ट निकला था टाइम्स ऑफ इंडिया में भी सी वनमती के बारे में पूरी स्टोरी छपी थी, वो भी मैंने नोट कर रखा था कि मैं समय आने पर आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी अच्छा है कि रवि पवार ने भेज दिया। इनके बारे में मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको पता लगे कि ये सिविल सर्विस यार आखिर में है क्या। आप अपने को इससे लिंक करके देखिए और आपको लगेगा कि यार जो आईएएस का बेटा था वो भी बन रहा है, जो लेबर का बेटा है वो भी बन रहा है, जो दिल्ली या बड़े बड़े महानगरों में रह रहा है वो भी बन रहा है, जो एक छोटे से गांव में रह रहा है वो भी बन रहा है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छी पोजीशन ला रहा है, कोई सेकेंड अटेम्प्ट तक पता ही नहीं लग रहा है और पता लगा कि थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट तक वो टॉप कर रहा है। तो ये जो इतने वेरिएशंस हैं, तो इन वेरिएशंस को देखने के बाद क्या आप एक अनुमान नहीं लगा सकते कि इसके बारे में कोई बना बनाया सूत्र नहीं है, फार्मूला नहीं है? तो फिर आप उस फार्मूले में अपने को क्यों बांधना चाहते हैं? अपना फार्मूला बनाइए ना। और फार्मूला यह है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, एनालिटिकल पावर हम कैसे डेवलप करें, आंसर कैसे लिखें, इन पर काम कीजिए। फिर आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, कहीं भी रह लीजिए, किसी भी तरीके से पढ़ लीजिए, कोई भी आपका अटेम्प्ट हो आप क्लियर कर जाएंगे। मित्रों, इस साइंस को समझिए। तो मित्रों, मैं बताता हूं आपको एक ऐसी महिला के बारे में या लड़की के बारे में, जो भी आप कहना चाहें, इनकी एज है 26 इयर्स और अभी ये इंडियन ओवरसीज बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं, जो अपने फर्स्ट 3 अटेम्प्ट में फेल होती रही और फोर्थ अटेम्प्ट में वो सक्सेस हुई हैं और उनको 152nd रैंक मिली है। और इतने सामान्य परिवार से हैं कि इन्होंने अपना बचपन पशुओं को चराने में बिताया है। इनके पिता का स्टेटमेंट मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि वनमती भैंस के बफेलो शब्द, भैंस के ऊपर बैठ कर और कलेक्टर बनने का सपना देखा करती थी, भैंस के ऊपर पशुओं को चराया करती थी। उनसे पूछा गया था कि भाई आपने ये कलेक्टर बनने की सोची कैसे, तो उन्होंने दो उत्तर दिए थे कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो उनके स्कूल में एक कलेक्टर आए थे और जब देखा कि भैया इनकी तो बड़ी इज्जत हो रही है तो मुझे लगा कि यार मुझे भी बनना चाहिए। और दूसरा उन्होंने देखा था, एक टीवी सीरियल देखा था उन्होंने, गंगा जमुना सरस्वती, उसमें जो महिला है वो कलेक्टर है, तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे उनसे प्रेरणा मिली। लीजिए, उन्होंने एक सीरियल देखा और एक बार कलेक्टर आ गए उनके स्कूल में, वहां से प्रेरणा मिल गई। दुनिया आपको रोज मोटिवेट करती रहे, रोज शाबाशी देती रहे, रोज उकसाती रहे, रोज आप डाउन हो रहे हैं, रोज फिर किया जा रहा है, तब भी बात नहीं बन रही है। मित्रों, इस मैकेनिज्म को समझिए, है ना, कि आपके जो अपने अंदर की ताकत है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि इससे पहले वनमति बिल्कुल ही असफल होती रही थी। इससे पहले भी 2011 में जब उन्होंने एग्जाम दिया था तो उसमें वो इंटरव्यू तक पहुंची थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। और मजेदार बात है कि इंटरव्यू के बारे बाद जब फिर से उन्होंने एग्जाम दिया तो प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। और वेरिएशंस देखिए, वहां तक इंटरव्यू तक पहुंच रही हैं, लेकिन अगली बार जब फिर से बैठी तो प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाई। 2013 में फिर से बैठी तो प्री तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई। रिवर्स गियर में देख रहे हैं ना, पहले 2011 में इंटरव्यू तक पहुंची, 2012 में प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ, 2013 में मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, और अब 14 में हुआ तो 192 रैंक आ गई। दोस्तों, ये जो फ्लक्चुएशन है, ये क्रिकेट मैच है, सचिन तेंदुलकर भी जीरो पर आउट होते हैं। तो दोस्तों, इन दो दिन के मेल्स में मुझे जो कुछ सूचनाएं मिली थी वो मैंने आपको दी हैं, और सिर्फ इसलिए दी हैं ताकि आपको पता लग सके कि रियल में ये सिविल सर्विस क्या है, आईएएस क्या है, आपके लिए क्या होना चाहिए और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरा उद्देश्य मात्र आपको केवल इतना बताना था। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये चीज आपके लिए बहुत काम आएगी और बहुत काम की है, बशर्ते कि आप इसे उस नजरिए से देख सके। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। वक्त काफी कम है, मुझे मालूम है कि आप लोगों को थोड़ी सी बेचैनी हो रही होगी कि ये सर क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, न्यूज के बारे में उन्होंने तो कुछ चर्चा की ही नहीं। तो लीजिए, मैं न्यूज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, ज्यादा कुछ है भी नहीं। कल के न्यूज में एक जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी कि सरकार ने नई कृषि बीमा योजना के बारे में अब बात की है। मेरे फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट को मालूम होगा कि जो कृषि व्यवस्था में स्थायी सुधार पर मैंने जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया था, उसमें स्पेशली मैंने कहा था कि सरकार को चाहिए कि वो एक बहुत ही सॉलिड कृषि बीमा योजना लेकर के आए। और उसमें मैंने सिस्टम बताया था कि चाइना में और अमेरिका में किस तरह से किसानों को 50% to 70% जो प्रीमियम होता है बीमा का वो सरकार देती है। इतने डेवलप्ड कंट्री में भी, अमेरिका तो डेवलप्ड कंट्री है, तो भारत भी क्यों नहीं कर सकता। और फिर मैंने टोटल कैलकुलेशन भी उसमें दिया था कि किस तरीके से अगर उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ले वहन कर ले और 25% स्टेट गवर्नमेंट वहन कर ले और बाकी रकम किसान वहन कर ले, तो कुल बहुत थोड़ी सी रकम में किसानों का एक परफेक्ट कृषि बीमा हो सकता है। एक जो इंपॉर्टेंट खबर थी उसमें न्यूज में ये था दोस्तों, अब जो कृषि बीमा योजना होगी उसमें कृषि के लिए अगर आप कुछ मशीन खरीदते, उपकरण खरीदते हैं तो उसका भी बीमा हो जाएगा, और जो कृषि के लिए आप ऋण लेते हैं उसका भी बीमा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि इस बार के सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि बीमा योजना स्पेशली। उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी था कि इससे पहले जब प्लानिंग कमीशन भी जो आती थी और रिपोर्ट्स आती थी दोस्तों, तो ये माना गया कि भारत को अगर आर्थिक विकास की गति अपनी तेज करनी है तो जो एग्रीकल्चर की जो रफ्तार है, एग्रीकल्चर के विकास की जो रफ्तार है, कृषि विकास की दर जो है वो 4% तक होनी चाहिए। हमारी विकास की दर 2% के आसपास है। कुछ राज्य जरूर बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं कृषि के मामले में, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इनकी 9 से 11% के बीच में आ जाती है विकास की दर, लेकिन नेशनल जो है वो 2.5% के आसपास है। 4% की विकास दर, ये आपको थोड़ी सी मालूम होना चाहिए। और फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि 85% जो हमारे किसान है वो छोटे और सीमांत किसान है, मतलब गरीब किसान है, समझ लीजिए, जिनके पास छोटे छोटे खेत है, थोड़ी थोड़ी जमीन है। और फिर उन्होंने यही कहा कि हमारे किसानों की जो सबसे बड़ी बुरी हालत है उसका कारण है लो प्रोडक्टिविटी। हमारा जो औसत उत्पादन है वो बहुत अच्छा नहीं है मित्रों। उसी में फिर नाबार्ड की भी बात आई थी और फिलहाल मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि नाबार्ड जो कृषि ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है इसके बारे में आपको एक छोटा सा नोट पढ़ लेना चाहिए कि नाबार्ड क्या है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं और ये किस तरह से काम करती है। नाबार्ड पर अलग से भी अगर छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो कोई गलत नहीं होगा, तो नाबार्ड को आप जरूर देख लें। इसके बाद मित्रों किर्गिस्तान की खबर थी जहां हमारे प्रधानमंत्री पहुंचे और किर्गिस्तान के बारे में दो चीजों पर बात हुई, एक तो विश्व आतंकवाद को लेकर के, विश्व आतंकवाद कह लीजिए विश्व उग्रवाद को लेकर के, और दूसरा रक्षा सहयोग के बारे में। आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि शुरू में जब हम लोगों ने मध्य एशिया और रूस के बारे में बात की थी अपने प्राइम मिनिस्टर की यात्रा को लेकर, तो उसमें हम लगातार इस बात पर जोर रहे कि इस एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और खासकर जो एनर्जी के जो हैं पेट्रोलियम है और यूरेनियम है ये बहुत ज्यादा है, उसमें से आप किर्गिस्तान को निकाल दीजिएगा। याद रखिएगा स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि किर्गिस्तान के बारे में उन रिसोर्सेज के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है जहां तक अभी तक जो न्यूज़ में बात थी और अखबारों में भी जो आ रहा है। रक्षा सहयोग पर जरूर बात हुई है और वो कम महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप पांचों देशों से लिख दें कि साहब एनर्जी के बारे में सहयोग हुआ है। मित्रों सानिया मिर्जा के बारे में मैंने आपको बताया कि वो डबल में विंबलडन जीती हैं और उनको सच में इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मित्रों आखिरी में था कि पब्लिक स्पीक का जो सब्जेक्ट था कौशल विकास और उद्यमता के लिए राष्ट्रीय नीति एक नेशनल पॉलिसी तैयार हो रही है, तो डेफिनेटली ये आप लोगों को सुनना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। न्यूज़ के बारे में फ्रेंड्स इतना ही, अखबारों की क्लिपिंग्स आज बहुत थोड़ी सी हैं, उसमें डिस्कस करने लायक कुछ विशेष नहीं है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये मैं क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें दोस्तों खासकर जो टाइम्स ऑफ इंडिया की क्लिपिंग्स है वो खासकर हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए ज्यादा उपयोगी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसे जनरल स्टडीज के दृष्टि से भी आप पढ़ें क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि पुराने समय में हमारी प्राचीन संस्कृति के समय में या प्राचीन भारत के समय में हमारी जो महिलाएं थी वास्तव में कितनी स्वतंत्र थी। तो एक अच्छा आर्टिकल है और ये आर्टिकल आपको निबंध में भी काम आएगा और डेफिनेटली जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो उपयोगी होगा ही। मित्रों अब मैं आता हूं अपने अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है। मेरे पास मेल आया सोनू कुर्मी का, सागर मध्य प्रदेश से हैं। तो सोनू तुमने एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई कर लिया है, अब तुम मेंस में जाओगे, इसके लिए तुमने एकेडमी को अपना श्रेय दिया है। मैं एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से और अपने सभी श्रोताओं की तरफ से तुमको इसके लिए बधाई देता हूं और हम सब मिलकर इस बात की कामना करते हैं कि तुम मेंस क्वालिफाई कर चुके हो, इसकी सूचना भी हम लोगों को जल्दी से जल्दी दो। मित्रों मेरे पास एक मेल है मुश्ताक सिद्दीकी का जो अहमदनगर से है महाराष्ट्र से, वो अभी अक्टूबर के बैच में आ रहे हैं, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है और जो भी उनके एरिया से आ रहे हों वो यदि चाहें तो मुश्ताक सिद्दीकी से इस मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 8657351035। मित्रों मेरे पास एक और मेल है लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, ये जोधपुर से इन्होंने मेल लिखा है और इन्होंने लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इनका राजस्थान का जो एकमात्र ए ग्रेड ऑटोनोमस कॉलेज है वहां उनका सिलेक्शन हुआ और जब कुछ स्टूडेंट के लिए जब क्लास में गए तो उनकी क्लास बहुत ही खचाखच भरी हुई थी कुछ दिनों तक पढ़ाने के बाद, और उन्होंने कहा है कि सर इसका जो श्रेय है, जो पब्लिक स्पीक मैं वहां इतने अच्छे से कर चुका उसका जो श्रेय है वो बहुत ज्यादा आपको मैं देना चाहूंगा, इट कुड नेवर बी पॉसिबल विदाउट यू सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, लेकिन मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि इन्होंने नाम नहीं लिखा है। और मित्रों मैं इसी के माध्यम से एक और भी बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब भी आप मेल लिख लें तो प्लीज जो भी किसी को भी कुछ भी लिखें, मैं इसी मेल की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखें, लिखने के बाद उसे एक बार जरूर पढ़ें और देखें कि वो कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया है, पूरा है या नहीं है, तो इससे आपकी एक अच्छी आदत पड़ेगी। तो दोस्तों इसके बाद एक मेल मुझे मेरे पास आया इमाम अली से, उन्होंने लिखा है जो मेरे एकेडमी के स्टूडेंट भी रहे हैं कि उन्होंने एक एफ ENGO करके एक संस्था बनाई है और उसके माध्यम से वो वहाँ स्टूडेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इमाम अली, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सब की तरफ से शुभकामनाएं भी कि तुम अपनी एनर्जी को इसी तरह से कुछ कंस्ट्रक्टिव काम में भी लगाते रहो और साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते रहो। मित्रों, इसके अतिरिक्त मैं बहुत से मेल आए हैं, उन सबको धन्यवाद और उन सबको का बहुत बहुत आभार। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, ममता एक है, मुजम्मिल अंसारी बिजनौर से, विधान चंद्र बलिया से, विनोद कुमार औरंगाबाद से, सिद्धार्थ बाड़मेर से, भरत गुप्ता कंचन बत्रा मुरादाबाद से, गौरव धीमान चंडीगढ़ से, विशाल कदम पुणे से, मुकेश कुमार झा अररिया से और अविनाश कुमार कोचिन से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।